एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम शब्दों के पंखों पर बैठकर एक पूरे महाद्वीप की एक साहित्यिक यात्रा पे निकल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आप कह सकते हैं जादू और यथार्थ हाथ मिलाते हैं, जहां इतिहास कहानियों में सांस लेता है।
बिल्कुल, और जहां साहित्य सिर्फ मतलब मनोरंजन नहीं है।
हाँ, वो पहचान की लड़ाई का एक मैदान है ना।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लातिन अमेरिका की, और उसे समझने की एक बहुत ही उम्दा चाबी है हमारे पास रॉबर्टो गोंजालेस एचेवेरिया की किताब मॉडर्न लैटिन अमेरिकन लिटरेचर।
अच्छा,
ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे एक साहित्य जो कभी शायद यूरोप की परछाई में था,
हाँ, नकल करता था एक तरह से,
सही, उसने कैसे अपनी खुद की आवाज पाई और दुनिया को कुछ सबसे अनोखे और ताकतवर लेखक दिए।
और मुझे लगता है ये आज भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लैटिन अमेरिका की नहीं है। ये दिखाती है कि कहानियां कैसे बनती हैं, कैसे वो सत्ता को चुनौती देती हैं।
हाँ, और कैसे अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से कुछ एकदम नया, कुछ जबरदस्त बन सकता है।
बिल्कुल, और ये बातें कहीं ना कहीं हमारे अपने अनुभवों से, हमारे समाज से भी जुड़ती हैं।
तो इस सफर में जो हमारे गाइड हैं रॉबर्टो गोंजालेस एचेवेरिया, वो कोई साधारण एकेडमिक नहीं है।
अच्छा,
क्यूबा में जन्मे हैं, मतलब वो उस मिट्टी को, वहां की नब्ज को पहचानते हैं जिसके बारे में वो लिख रहे हैं,
अंदर से समझते हैं।
हाँ, और अब येल यूनिवर्सिटी में हिस्पैनिक और कंपैरेटिव लिटरेचर के प्रोफेसर हैं। तो एक बाहरी, एक विश्लेषणात्मक नजर भी है उनके पास।
हाँ, ये डबल पर्सपेक्टिव, ये दोहरा नजरिया ही शायद उन्हें खास बनाता है।
बिल्कुल,
वो उन कल्चरल टेंशन्स को, ऐतिहासिक चोटों को, और वो जो क्रिएटिव विस्फोट हुए, उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से देख पाते हैं। वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, वो समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
सही कहा, और उनका एक बड़ा दिलचस्प आइडिया है आर्काइव का, मतलब अभिलेखागार।
हाँ, मिथ एंड आर्काइव उनकी एक और किताब है ना।
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि लातिन अमेरिकी साहित्य की जानी इस बात में है कि वो कैसे लगातार सरकारी सच को,
सरकारी सच
मतलब जैसे कानून, विज्ञान,
हाँ, कानून, विज्ञान, इतिहास के जो ऑफिशियल दस्तावेज होते हैं, उनको चैलेंज करता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है और अपनी कहानी कहता है।
ओ, तो साहित्य एक तरह का काउंटर नैरेटिव बन जाता है।
एग्जैक्टली, एक जवाबी दस्तावेज।
और उनके काम को पहचान भी मिली है। आपने बताया येल में प्रोफेसर हैं और 2011 में अमेरिका का वो प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल भी मिला उन्हें।
हाँ, तो ये साफ है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के नजरिए से समझ रहे हैं जो इस विषय के गहरे जानकार हैं और जिन्होंने इस पर एक नई सोच दी है। वो हमें सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या लिखा गया, बल्कि ये भी कि वो क्यों लिखा गया
और उसका असर क्या हुआ।
बिल्कुल, तो ये किताब असल में करती क्या, सिर्फ लिस्ट तो नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस रास्ते की कहानी है जिस पर चलकर लातिन अमेरिकी साहित्य ने अपनी पहचान खोजी। कैसे उसने अपनी जड़ों को, मतलब वहां की जो स्वदेशी परंपराएं थीं, यूरोपियन प्रभाव थे, अफ्रीकी विरासतें थीं, इन सबके मुश्किल घालमेल को अपनाया।
अच्छा, ये जो मिक्सिंग है।
हाँ, इसी को लेखक सांस्कृतिक संश्लेषण या मिस्तिजाजे कहते हैं। ये किसी एक शुद्ध पहचान की खोज नहीं है,
बल्कि उस मिश्रण को ही अपनी ताकत बनाने की कहानी है।
बिल्कुल सही,
और किताब का सबसे बड़ा दावा जो मुझे लगता है वो शायद यही है कि ये साहित्य सिर्फ समाज का आईना नहीं है,
नहीं,
बल्कि इसने लातिन अमेरिकी पहचान को, वहां की रियलिटी को, वहां की आधुनिकता की सोच को बनाने में सीधा रोल निभाया है।
हाँ, इसने गढ़ा है उन चीजों को, ये लगातार उस आर्काइव से टकराता रहा है,
सत्ता की उस भाषा से जो कहती थी कि सच ये है।
हाँ, और साहित्य ने कहा नहीं रुको, सच और भी कॉम्प्लिकेटेड है और हम उसे बताएंगे।
तो किताब हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है।
हाँ, करीब 100 साल का सफर, 19वीं सदी के आखिर से लेकर आज तक, मेक्सिको से अर्जेंटीना तक, कैरिबियन से लेकर एंडीज तक।
वाह,
हम देखेंगे कि कैसे लेखक अपनी जमीन से जुड़े रहे, पर साथ ही दुनिया भर में जो चल रहा था, जो साहित्यिक आंदोलन थे, उनसे भी सीखते रहे, उनसे लड़ते भी रहे।
सवाल यही है कि कैसे दुनिया के कोने से, हाशिए से उठी एक आवाज विश्व साहित्य के सेंटर स्टेज पर इतनी बुलंद हो गई।
यही कहानी है।
तो चलिए इस कहानी के कुछ अहम मोड़ समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है आधुनिक आवाज की तलाश से। ये लेट 19वीं सेंचुरी, अर्ली 20वीं सेंचुरी का दौर है,
जब देश आजाद हो रहे थे पर कल्चरली यूरोप का असर बहुत था।
बिल्कुल, ऐसे में मॉडर्निस्मो आंदोलन सामने आता है। इसमें बड़े नाम हैं निकारागुआ के रूबेन दारियो, और क्यूबा के होसे मार्ती।
अच्छा,
ये लोग यूरोप से, खासकर फ्रेंच पोएट से सीख तो रहे थे, पर उनका मकसद नकल करना नहीं था।
वो अपनी भाषा स्पैनिश को एक नया रूप देना चाहते थे।
हाँ, एक नया आर्टिस्टिक विश्व स्तरीय रूप जो लातिन अमेरिकी सच्चाई को भी दिखा सके। ये एक तरह से अपनी कल्चरल आजादी का ऐलान था।
दारियो ने भाषा पर काम किया, उसे तराशा, उसमें संगीत भरा।
सही।
जबकि मार्ती ने नुएस्ट्रा अमेरिका यानी हमारी अमेरिका का नारा दिया, अपनी जड़ों से जुड़ने की बात की। उन्होंने कहा वही हमारी सच्चाई यूरोप से अलग है। इसके बाद कहानी कहाँ जाती है, रुख बदलता है साहित्य का।
हाँ, रुख बदलता है। अब नजर यूरोप के चमकते शहरों से हटकर अपनी जमीन पर आती है। ये दौर है जमीन, प्रयोगवाद और क्षेत्रीय उपन्यास का, लगभग 1920 से 1940 तक।
नोवेला दे ला तियरा यानी जमीन का उपन्यास।
हाँ, इनमें अक्सर क्या होता था कि प्रकृति की विशाल अनकंट्रोल्ड ताकत और इंसानी संघर्ष को दिखाया जाता था।
जैसे वेनेजुएला का वो मशहूर उपन्यास डोना बारबरा।
बिल्कुल, उसमें एक तरफ जमीन पर राज करने वाली ताकतवर औरत है डोना बारबरा, जो नेचर की तरह है, और दूसरी तरफ शहर से आया पढ़ा लिखा वकील।
सभ्यता बनाम बर्बरता वाली कहानी।
हाँ, पर ये उपन्यास सिर्फ यही नहीं थे, ये अपने देश की सच्चाई, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी कर रहे थे।
या जैसे कोलंबिया का ला वोर्गिने, जो अमेज़न के रबर प्लांटेशंस की भयानक दुनिया दिखाता है।
सही, ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये एक तरह से नेशन को समझने का प्रयास थी।
और इसी दौर में शहरों में यूरोप के वो एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट्स का असर भी आया।
हाँ, अवांट-गार्डे, उसका असर भी शहरों में दिखने लगा, जिससे लिखने के तरीकों में नएपन की तलाश शुरू हुई।
और फिर आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, मतलब वो जमीन तैयार हुई जिस पर आगे चलकर वो बूम का धमाका होना था।
हाँ, ये है नई कथा के निर्माता, अग्रदूत, 1940 और 50 का दशक।
यहाँ कुछ ऐसे लेखक आए जिन्होंने पूछा कहानी क्या है, यथार्थ क्या है, और इसे कहा कैसे जाए।
बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा नाम शायद अर्जेंटीना के होर्हे लुइस बोर्हेस का लेना पड़ेगा।
बोर्हेस, क्या कमाल के लेखक
जी।
हाँ,
उनकी कहानियां सीधी नहीं होती, वो तो पहेलियां हैं, समय, पहचान, इन्फिनिटी, किताबें, भूल भुलैया।
वो दिखाते हैं कि लिटरेचर और दुनिया एक दूसरे के आईने हैं।
हाँ, और शायद सब कुछ एक सपना ही है। उन्होंने लातिन अमेरिकी साहित्य को एक फिलोसॉफिकल गहराई दी, उसे दुनिया के इंटेलेक्चुअल मैप पर ला खड़ा किया।
फिर क्यूबा के अलेहो कारपेंटियर, उनका वो कमाल का आइडिया लोरियाल मरावियूस।
हाँ, अद्भुत यथार्थ।
क्या मतलब है इसका?
उनका कहना था कि भाई लातिन अमेरिका का इतिहास, वहां की संस्कृति ही इतनी अजीब है, इतनी नाटकीय, इतने विरोधाभासों से भरी है, जहां यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका की दुनियाएं टकराई, कि यहाँ का यथार्थ खुद ही जादुई लगता है।
अच्छा, उसे रचने के लिए अलग से जादू डालने की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, उनका नॉवल है इस दुनिया का राज, हैती की क्रांति पर, वो इसी बात का सबूत है।
और ग्वाटमाला के मिगवेल एंजेल हस्तूरियस, जिन्हें नोबेल भी मिला।
हाँ, उन्होंने अपनी कहानियों में जो माया मिथक थे, वहाँ के लोगों का दुनिया देखने का नजरिया था, उसे मॉडर्न भाषा में पिरोया।
जैसे उनकी किताब मकई के मानव।
सही, ये दिखाते हैं कि मिथक कैसे इतिहास से भी ज्यादा गहरा सच बता सकते हैं। इन तीनों ने मिलकर आप कह सकते हैं यथार्थवाद की सीमाओं को तोड़ा और आने वाले लेखकों के लिए रास्ता बना दिया।
और अब आता है वो दौर, वो धमाका, बूम, 1960s-70s, जिसने लातिन अमेरिकी साहित्य का नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया।
बिल्कुल, पर ये कोई रात भर में हुआ चमत्कार नहीं था।
हाँ, आपने कहा इसके पीछे दशकों की तैयारी थी।
हाँ, लेखकों की एक पूरी प्रतिभाशाली पीढ़ी थी, क्यूबा क्रांति के बाद का एक बदला हुआ पॉलिटिकल माहौल था, और स्पेन और लातिन अमेरिका में पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी बेहतर हो रही थी।
तो इस बूम के चार बड़े पिलर्स माने जाते हैं।
हाँ, चार महारथी। पहला नाम जाहिर है कोलंबिया के गैब्रियल गार्सिया मार्केस।
गैबो, उनकी 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड यानी 100 साल का अकेलापन, वो तो जैसे इस दौर का मैनिफेस्टो बन गई।
बिल्कुल, उनका जादुई यथार्थवाद, ये सिर्फ परिकथा नहीं है।
नहीं,
ये लिखने का एक ऐसा तरीका है जहां जो अविश्वसनीय घटनाएं हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे घटती हैं मानो बिल्कुल नॉर्मल हो।
ये उस मिलीजुली सच्चाई को पकड़ने की कोशिश थी जहां मिथक और इतिहास में फर्क करना मुश्किल है।
सही कहा। दूसरा स्तंभ, पेरू के मारियो वर्गास लोसा।
इनकी कहानियां अक्सर बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, कई किरदार, कई टाइमलाइंस
और तीखी राजनीतिक आलोचना। वो दिखाते हैं कैसे पावर इंसान को करप्ट करती है, कैसे इतिहास लोगों को रौंदता है, उनकी टेक्निक भी कहानी का हिस्सा बन जाती है।
तीसरे हैं अर्जेंटीना के जूलियो कोर्टाज़ार, ये तो रीडर के साथ खेलते हैं।
हाँ, उनकी किताब हॉपस्कॉच या रायुएला, आप उसे कई तरीकों से पढ़ सकते हैं, चैप्टर्स को जंप करके।
ये दिखाता है कि सच्चाई कोई एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि कई रास्तों का जाल है।
बिल्कुल, वो पाठक को कहानी बनाने में पार्टनर बना लेते हैं।
और चौथे मेक्सिको के कार्लोस फुएंटेस,
हाँ, वो इतिहास के बड़े कैनवस पर लिखते हैं, दिखाते हैं कि कैसे अतीत आज भी जिंदा है और अक्सर हमें परेशान करता है।
उनकी आर्तेमियो क्रूज की मौत, मैक्सिकन क्रांति के आदर्शों और उसके बाद जो मोहभंग हुआ,
हाँ, उसकी कहानी एक मरते हुए आदमी की यादों के जरिए कहते हैं। ये लेखक सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे थे, ये तो पूरे कॉन्टिनेंट का एक्सरे कर रहे थे।
और इनमें गजब की एम्बिशन थी टोटल नॉवेल लिखने की।
हाँ, संपूर्ण उपन्यास, ऐसा नॉवेल जो एक परिवार या एक कस्बे की कहानी के जरिए पूरे देश या महाद्वीप की आत्मा को पकड़ ले,
उसका इतिहास, उसके मिथक, उसकी राजनीति, सब कुछ।
हाँ, और काफी हद तक वे कामयाब भी रहे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी, बूम के बाद क्या हुआ?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला पड़ाव है पार्टी के बाद, पोस्ट बूम और समकालीन धाराएं। ये 80 के दशक से लेकर अब तक का दौर है।
अब जो लेखक आए वो अक्सर बूम की छाया से निकलना चाहते थे।
हाँ, कुछ ने उस विरासत को आगे बढ़ाया, कुछ ने उसे चैलेंज किया।
विषय भी बदले होंगे।
हाँ, विषय भी बदले। अब फोकस तानाशाही के जख्मों पर, शहरों के अकेलेपन पर, औरतों के अनुभवों पर, पॉप कल्चर के असर पर, इन चीजों पर ज्यादा गया।
बूम का वो जादू थोड़ा कम हुआ और यथार्थ शायद ज्यादा खुरदुरा, ज्यादा डायरेक्ट नजर आने लगा।
सही कहा। और टेस्टिमोनियो यानी गवाही या आप बीती वाला साहित्य, वो बहुत अहम हो गया।
जैसे रिगोबर्टा मेंचू की कहानी।
हाँ, इसने सच और कहानी के रिश्ते पर फिर से सवाल खड़े किए।
और महिला लेखिकाओं की आवाजें ज्यादा मजबूती से उभरी, है ना?
बिल्कुल। चिली की इसाबेल अलेंदे, उन्होंने द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स जैसी किताबों में गार्सिया मार्केस की तरह जादू का इस्तेमाल किया, पर एक बिल्कुल अलग फेमिनिस्ट नजरिए से।
उन्होंने वो कहानियां कहीं जो पहले शायद मार्जिन पर थीं।
सही। और हाल के दशकों में चिली के रॉबर्टो बुलानो जैसे लेखकों ने दुनिया भर में धूम मचाई।
बुलानो, हाँ।
उनकी रचनाओं में अक्सर एक तरह का बिखराव है, निर्वासन का दर्द है, और 20वीं सदी की जो बड़ी बड़ी उम्मीदें थी उनके टूटने का एहसास मिलता है।
तो ये दिखाता है कि लैटिन अमेरिकी साहित्य कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है।
नहीं, बहती हुई नदी है जिसमें लगातार नई धाराएं जुड़ती रहती हैं।
तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो कुछ मोटी मोटी बातें, कुछ थीम्स क्या नजर आती हैं? पहली बात जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक करती है वो है ये सांस्कृतिक मिश्रण, मिस्तिजाजे और अपनी आवाज की तलाश। इस साहित्य की ताकत किसी एक शुद्ध जड़ में नहीं है, बल्कि वो जो अलग अलग प्रभाव है, यूरोपियन, अफ्रीकी, स्वदेशी, उनको मिलाकर कुछ नया बनाने में है।
बिल्कुल, ये मिलावट ही इसकी पहचान है।
हाँ, ये कुछ कुछ अपने यहाँ जैसा ही है ना, जहाँ इतनी सारी संस्कृतियां मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं।
ये एकदम सही कहा। और दूसरी अहम बात जो गंजालेज़ एचेवेरिया बार बार कहते हैं, साहित्य का सत्ता के आर्काइव से टकराव,
वो जो सरकारी सच है।
हाँ, कैसे कहानियां हमेशा सरकारी दावों को, कानूनी दस्तावेजों को, ऑफिशियल हिस्ट्री को चुनौती देती आई हैं। साहित्य कहते रुको, सत्ता का सच अधूरा है, असली कहानी ज्यादा जटिल है, ज्यादा इंसानी है।
ये तो हमारे यहाँ भी दिखता है, कैसे इतिहास को लेके अलग अलग दावे होते हैं, कैसे लोगों की यादें सरकारी कहानी से अलग होती हैं।
बिल्कुल। तीसरा, मिथक और इतिहास का गहरा रिश्ता।
यहाँ ये दोनों अलग नहीं है।
नहीं, एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। वो जादुई यथार्थवाद इसी का नतीजा है। ये बताता है कि दुनिया को सिर्फ लॉजिक से नहीं समझा जा सकता।
मिथक यहाँ जिंदा है, वो लोगों की सच्चाई का हिस्सा है।
हाँ, जैसे हमारे महाकाव्यों या लोक कथाओं में भी तो इतिहास और मिथक ऐसे घुले मिले हैं।
चौथा पॉइंट क्या होगा?
चौथा, साहित्य यहाँ अक्सर एक पॉलिटिकल एक्ट बन जाता है, चाहे वो सीधे नारे न भी लगा रहा हो।
जहाँ इतनी तानाशाही और असमानता रही हो, वहाँ लिखना ही अपने आप में एक स्टैंड लेना है।
हाँ, गवाही देना है। तानाशाह उपन्यास तो जैसे एक अलग जॉनर ही बन गया।
भारत में भी इमरजेंसी के दौर का साहित्य याद आता है, कैसे वो समय की पुकार बन गया था।
सही। और पांचवा, कहानी कहने के नए नए तरीके खोजना, फॉर्म में इनोवेशन।
बोर्हेस की पहेलियां, कोर्टाज़ार के खेल, वर्गास लोसा की वो टूटी हुई टाइमलाइंस,
ये सिर्फ स्टाइल नहीं थे।
नहीं, ये जरूरी थे उस उलझी हुई सच्चाई को पकड़ने के लिए जो सीधी कहानी में समाई नहीं सकती थी। यहाँ फॉर्म और कंटेंट एक ही चीजें हैं।
और आखिरी में पहचान का सवाल।
हाँ, इस साहित्य ने लातिन अमेरिकी होने का मतलब क्या है, इसे गढ़ा है, इस पर बहस की है और दुनिया को दिखाया है।
इसने बाहरी दुनिया के दिए स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं।
हाँ, और अंदर की विविधता को आवाज दी है, जिससे हमारे यहाँ दलित साहित्य या स्त्रीवादी लेखन पहचान के नए मायने गढ़ रहा है।
इस किताब में कुछ बातें या कोट्स जैसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, अर्थ को दिखाने का तरीका है जो पारंपरिक यथार्थवाद के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा और अद्भुत है।
सही, ये कोई बचपना नहीं है बल्कि सच्चाई को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखने का एक गहरा तरीका है।
एक और कमाल की बात, परिधि केंद्र बन गई अपनी परिधीय स्थिति के प्रति सच्ची रहकर।
वाह,
यानी दुनिया ने उन्हें इसलिए नहीं अपनाया कि वो नकल कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो अपने जैसे थे, अपनी बात कह रहे थे।
मौलिकता में ही ताकत थी।
हाँ, और ये विचार तो जैसे किताब का सार ही है। आधुनिक लैटिन अमेरिकी साहित्य अभिलेखागार के कथनात्मक अधिकार को चुनौती देकर पैदा हुआ।
साहित्य ने सत्ता के सच पर सवाल उठाया सीधा।
और आखिरी, लैटिन अमेरिका में उपन्यास हमेशा से ऐतिहासिक लेखन का एक रूप रहा है।
मतलब फिक्शन यहाँ सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इतिहास को समझने और लिखने का एक तरीका भी है।
ये सारी बातें सुनने में थोड़ी शायद अकादमिक लगे, पर सोचें तो इनके मायने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हैं।
हाँ बिल्कुल है।
सबसे पहले तो कहानियों की ताकत को समझना। हम दिन भर कहानियों से घिरे रहते हैं, फिल्में, एड्स, खबरें, सोशल मीडिया।
ये कहानियां हमें बताती हैं कि क्या सोचना है, किसे अच्छा मानना है, किसे बुरा।
तो सवाल पूछना बनता है, ये कहानी कौन सुना रहा है, क्यों सुना रहा है, क्या कोई और कहानी भी हो सकती है।
बिल्कुल। और दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, आलोचनात्मक नजरिया।
हाँ, जैसे लैटिन अमेरिकी लेखक सत्ता के आर्काइव पर सवाल उठाते थे,
वैसे ही ये हमें सिखाता है कि आज जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे व्हाट्सएप पर आए या टीवी पर, उसे आंख मूंद कर मान ना लें।
पूछें, क्या यही पूरा सच है, किसका फायदा है इसमें।
तीसरा, मिलीजुली संस्कृति की कद्र करना।
ये समझना कि अलग अलग विचारों, भाषाओं, रिवाजों का मिलना कमजोरी नहीं है
बल्कि खूबसूरती है, क्रिएटिविटी है। जैसे लैटिन अमेरिका ने अपनी मिस्तिजाहे को अपनाया, वैसे ही हम अपनी डाइवर्सिटी को और सराह सकते हैं।
शुद्धता का विचार अक्सर खतरनाक होता है।
बहुत खतरनाक। चौथा, दूसरे नजरियों को समझना और सहानुभूति रखना, एम्पथी।
जब हम किसी दूसरी संस्कृति का साहित्य पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ते,
हम उन लोगों की जिंदगी को, उनके डर, उनकी उम्मीदों को महसूस करते हैं। ये हमें सुपरफिशियल सोच और स्टीरियोटाइप से बचाता है।
लैटिन अमेरिकी उपन्यास पढ़ना हमें दुनिया के एक बड़े हिस्से के करीब लाता है।
सही।
और आखिर में जटिलता को स्वीकारना, कॉम्प्लेक्सिटी।
दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, जिंदगी में कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है।
ये साहित्य हमें यही दिखाता है।
हर चीज का आसान जवाब नहीं होता और शायद यही ठीक है।
इसे एक्सेप्ट करना हमें ज्यादा समझदार बनाता है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि साहित्य सिर्फ जिंदगी की नकल नहीं करता, वो जिंदगी को बनाता भी है।
शब्द दुनिया बदल सकते हैं, या कम से कम दुनिया को देखने का हमारा नजरिया तो बदल ही सकते हैं, खासकर जब वो सत्ता की भाषा को चुनौती देते हैं।
और मेरे लिए सबसे यादगार बात यह है कि अपनी पहचान अपनी जड़ों से जुड़ने और साथ ही बाहर की दुनिया से सीखने दोनों से बनती है।
लैटिन अमेरिकी साहित्य ने यूरोप की नकल छोड़ी, अपनी आवाज खोजी और दुनिया भर में छा गया। ये कहानी है कि कैसे आप किनारे पर होकर भी दुनिया के लिए अहम हो सकते हैं,
अगर आप अपनी कहानी अपनी जुबान में कहें।
बिल्कुल। क्या हम अपनी कहानी कह रहे हैं, ये सवाल सोचने लायक है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।